ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद सात अध्याय दस भक्त श्रीमणि प्रह्लाद स्मरण आचार्य उनकी आज उक्ति हम पढ़ेंगे। श्री प्रह्लाद वाच मामं प्रलोभयत्पत्या सक्त कामेषु ते बर्हि तत्संग भीत निर्विन्ना मुमोक्षोस्त्वं उपाश्रितः। तात्पर्य भौतिकवादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। यह आसक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कामेच्छा पर और वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित है। कामे स्ते स्ते हृत ज्ञान जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान जाता रहता है। हृत ज्ञान जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वह विविध भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं क्योंकि यह दिव्य दंपति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकते हैं। लेकिन प्रह्लाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे, अतः उन्होंने नरसिंह देव के चरण कमलों की शरण ग्रहण की, किसी अन्य देवता के चरण कमल की नहीं। यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इस भौतिक जगत से तीनों तापों से तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण के बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव नहीं है। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अतः यदि उन्हें भौतिक भोग के अधिक से अधिक अवसर मिलता है वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु प्रह्लाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकवादी पिता से हुआ था किंतु भक्त होने के कारण उन्हें कोई भौतिक इच्छा न थी। अन्याभिलाषितम शून्यम। श्रील प्रभुपाद की जय। ओं अज्ञान तमिरंधस्य ज्ञानांजन सलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपतांतिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्वं तं साचिवं साद्वैतं साबधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांसा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वास्तविक जो भक्ति करने वाले हैं वा भक्ति के साधक हैं उनकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए यह हम प्रह्लाद महाराज जैसे महाजन से सीखना चाहिए, क्योंकि धर्म की विषय कौन जानते हैं? जो महाजन है, जो महान पुरुष है। इसलिए महाभारत में एक श्लोक आती है, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री कौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। महाभारत में कहा गया है, धर्मस्य तत्व निहितं गुहायं महायन येन गतस्य पंथा। धर्म की गुह्य विषय महाजन लोग ही जानते हैं, इसलिए उनकी पथ को अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही वास्तविक क्या है? सवै पुंसा परो धर्म जतो भक्ति अधोक्यच। तो भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में महाजन लोक ने निरूपित किए हैं, और ऐसे महाजन की उक्ति क्या है? वो कहते मां मम प्रलोभयेत पत्या। नरसिंहदेव ने देखे छोटे से बालक 5 साल की उम्र में इतनी उनके पिता की प्रताड़ना को सहन कर लिया, स्वयं उनके पिता ने कितनी कठिनाई में उनको डाले, परंतु प्रह्लाद नारद जी के संग प्राप्त करने के कारण हर परिस्थितियों में वो भगवान के ऊपर आश्वस्त थे, उनकी शरण ले चुके थे, इसलिए उनको इस विपत्ति बा कष्ट कोई उनके मन पर कोई असर नहीं डाला। परंतु जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए इस हिरण्यकशिप को मारने के लिए, अपने भक्त प्रह्लाद को अपने प्रेम प्रदान करने के लिए, भगवान कह रहे हैं प्रह्लाद मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इतना ही कार्य किए, तुम कुछ तो बर मांग लो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता होने पर इस संसार में कोई भी ऐसे वस्तु उनके लिए दुर्लभ नहीं होता है। इसलिए प्रह्लाद तुम मुझसे मांग लो और मैं आपको दिए बिना कभी संतुष्ट नहीं रह सकता हूं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे? देखो ये छोटे से बच्चा भगवान के लिए इतना कुछ किया और भगवान उसको ऐसे ही धोखा दे दिए, कुछ नहीं दिए। प्रह्लाद तुम्हारे मंगल हो, प्रह्लाद भद्रम भद्रम ते, मैं तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हूं, पीतो हंग ते सुरत महा, तुम आसुर वंश में सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारी महिमा जुग जुग तक लोग गाते रहेंगे, बरम ब्रणी संग अभिमतम काम पुरस्पृहं नृणाम। आप वर मांगो। क्यों वर मांगना चाहिए? क्योंकि मेरी प्रसन्नता होने पर मांग प्रणीतं आयुष्मान दर्शनं दुर्लभं हिमे। देखो हम लोग कितने दुर्भागा हैं, मंदिर पास होने पर भी लोग नहीं आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं आयुष्मान दर्शनम, जो लोग मुझे दर्शन करते हैं, मेरे श्री विग्रह को दर्शन करते हैं, उनके आयु बढ़ जाता है। परंतु मुझे दर्शन करना दुर्लभ है। वास्तविक सबके सौभाग्य में नहीं जुड़ता है भगवान को दर्शन करना, ये भगवान कहते दुर्लभ अंगी में दर्शन, क्योंकि मेरी दर्शन होने पर, साक्षात दर्शन होने पर क्या होता है, दृष्ट्वा मग्न पुनर्जंतुर आत्मानं तप्तुमरहति। अगर कोई मेरे दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई मां के गर्भ में फिर प्रवेश नहीं करता है, गर्भ के कष्ट व पीड़ा को सहन करना नहीं पड़ता है। फिर भगवान कह रहे हैं हे प्रह्लाद तुम्हारे कितने बड़े सौभाग्य हैं, प्रिणंतिं ह्यात मांग धीरा, क्योंकि तुम्हें मुझे केवल दर्शन नहीं किए, मुझे आप प्रसन्न भी कर लिए, प्रार्थना से मुझे प्रसन्न कर लिए, सर्वभावेन साधव, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो साधु भावना है, साधु का पहला लक्षण है सहिष्णुता। प्रह्लाद के अंदर जो सहिष्णुता गुण था, अपने सारी प्रकार पिताजी की सारी प्रकार की प्रताड़ना को सहन कर ली, यही कहते साधवम तितिक्षिव कारुणिक श्रोतम सर्वदेहिनम अजात शत्रवं साधु साधवं साधु भूषणम, अजात शत्रवं शांतः साधवं साधु भूषणम। पहला तितिक्षा, ये संसार में हम अपने मान को सहन नहीं कर पाते हैं, इसमें काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होता है, निंदा प्रशंसा में हमारी मन डामाडोल हो जाता है। परंतु प्रह्लाद जैसे महान भक्त किसी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनके मन में कभी काम प्रवेश नहीं किया। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में भी सहनशील है उसको कहते धीरा, धीरस्तत्र नमुह्यति। ये संसार में कभी हमको ठंडी लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी मान आता है, कभी अपमान है, कभी प्रकाश है तो कभी अंधकार है, कभी धन है कभी निर्धन है, ये दैत्य संसार है। परंतु जिस दैत्यता से जिसकी मन विचलित नहीं होता है, समा सुख धीरम समा दुखे सुखम धीरम, सुख में दुख में मान में अपमान में जो धीर बन जाता है, कष्ट तो आता है, कोई अपमान देने पर मन को तो पीड़ा होती है, कोई फिटने पर शरीर को तो पीड़ा होता है, परंतु जैसे हम ठंडी को सहन कर लेते हैं, कड़ी ठंडी है तो हम गर्मी का पोशाक पहन लेते हैं, तो उसी प्रकार सहिष्णुता रूपी मन के ऊपर ऐसा कपड़ा डालना चाहिए सहिष्णुता। और चैतन्य महाप्रभु को यही संदेश है तरो रीबा सहिष्णुता, वृक्ष कुछ नहीं बोलता है, उसको जाड़ा भी लगता है और ये बाहर खड़ा रहता है, हमको सभी प्रकार फैसिलिटी देता है, फल देता है, फूल देता है, पत्तियां लकड़ी, परंतु कभी प्रतिवाद नहीं करता है, क्यों इतना मुझे जाड़ा लग रहा है, कोई तो मुझे कंबल दे दो, कभी पेड़ कभी प्रतिज्ञा नहीं करता है कौन क्या उनको देगा, बल्कि लोग क्या करते हैं उस पेड़ को काट लेते हैं। परंतु वृक्ष कभी प्रतिवाद नहीं करता है। तो साधव के ही से सहिष्णुता होना चाहिए, तरो रीब सहिष्णुना। और नारद जी कह रहे हैं भगवान हर भक्त को परीक्षा करते हैं, उनकी मन की भावना कैसी है। यदि हम किससे प्यार करते हैं, प्यार केवल बातें पर नहीं होता है। सच्ची में आज संसार की प्यार सिर्फ ही शब्द पर रह गया है, बातें पर, इसलिए प्रेम ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। प्रेम एक हृदय की भावना है, वो भाषा से व्यक्त नहीं होने पर भी वो कभी कभी प्रकटित हो जाता है। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। तो इसलिए प्रेम की जो परीक्षा है ये संसार में होती है, और काम की भी परीक्षा होता है। तो भगवान करेंगे मांगो, लेकिन प्रह्लाद जी सोचने लगे भगवान क्यों इसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। इतने प्रलोभन देने पर भी प्रह्लाद जी, जिनकी जन्म असुर कुल में हुआ था, उन्होंने नारद जी के संग लाभ करके भक्ति की मर्म को समझ लिए और भगवान के इसी प्रकार आग्रह को वो समझ करके थोड़ा से मुस्कुरा दिए। स्मयमाना, भगवान के अभिप्राय को भक्त यथारूप समझ लेता है। प्रह्लाद जी थोड़े से मुस्कुरा करके बोले प्रभु ये क्या कह रहे हैं, और कैसे मन्यमान ऋषिकेश, माने भगवान को सम्मान करते हुए। कभी कभी हमको भी कोई माला दे दे, कोई कथा में ताली बजा दिए, लेकिन जो जानकार व्यक्ति हैं वो समझता है आज मुझे माला भी मिल रहा है और फिर गाली भी मिल सकता है, कभी ताली बजता है कभी गाली भी बजता है। तो ये संसार में हर चीज को सहन कर लेना चाहिए, परंतु अभिप्राय जानना चाहिए। गाली देते समय वो व्यक्ति का अभिप्राय क्या है और ताली बजाते समय उसके अभिप्राय क्या है। तो प्रह्लाद जी जैसे धीर व्यक्ति भगवान के अभिप्राय, भगवान की मन की इच्छा को समझ लिए, इसलिए बहुत नम्रता से हाथ जोड़ करके भगवान के सामने ऐसे बोल रहे हैं। जैसे आपके पंजाबी बाग में एक भक्त हमारे साथ गए थे द्वारका, तो वो आते हैं आपका भक्ति वृक्ष में, तो उनका छोटे से बच्चा था, तो प्रतिदिन उसके पिता खिलौना खरीद करके देते हैं, और खिलौना के बिना वो हमारे साथ गाड़ी में चढ़ा नहीं, 4 साल के हैं। तो एक बार शाम को अहमदाबाद मंदिर में वो खिलौना उसका पिताजी खरीद करके लाए और दिए, देखो आपको पसंद है, कहता हाँ अच्छा है, लेकिन उसमें ये नहीं बजता है, किसको लगा देते ना, मैं कहा दो मुझे, तो मैं इसको ले लिया और मैं इसे ऊपर फेंक दिया, मैं कहा ऐसा देखो फेंक दिया, तो पीछे इसे रख दिया खिलौना को। लेकिन वो बच्चा बहुत ध्यान से देखा, हालांकि वो शाम को अंधेरा था, वो बच्चा कहता है अच्छा प्रभु जी मेरे साथ आप खेलते हो, मैं समझ गया खिलौना कहाँ है। तो एक छोटे से बच्चा, उसके ध्यान है खिलौना में, और मैं खेलने पर भी उन्होंने समझ गया कि प्रभु जी मेरे साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उसके खिलौना विशारद हैं वो, कि खिलौना के विषय में जानता है और उनके साथ लोग खेलते हैं। तो प्रह्लाद जी भक्ति करने के कारण भगवान के अभिप्राय को भी समझ गए कि भगवान किस आशय पर मुझे ऐसे वर मांगने के लिए कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं, प्रह्लाद जी कह रहे हैं प्रभु मां प्रलभयत्वत्या मुझसे मत प्रलोभन दीजिए, ललचाइए मत। हम कभी कभी कहते हैं अच्छा हमको फूल माला पहना दिए, इसका मतलब कुछ निकालना है। किसी व्यक्ति को जो होशियार होते हैं ना व्यवसाय लोग, तो कुछ हम लोग क्या कहते हैं, जब जहाँ मास लोग हैं तो वहाँ उनकी थोड़ा प्रशंसा कर दो, माला चढ़ा दो, बहुत खुश होते हैं। परंतु जो होशियार हैं तो वो सोचते हैं हाँ कुछ निकालना है जेब से, इसलिए माला पहना रहे हैं। तो प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि प्रभु इसी प्रकार आश्वस्त कर रहे हैं कि मेरी भावना को जानने के लिए कि सचमुच मैं एक व्यवसायी हूं कि मैं भक्त हूं। प्रहलाद जी कितने नम्रता से कह रहे हैं, जैसे बड़े लोगों को आप पहनाएंगे ना, कहते नहीं नहीं मेरा एलर्जी है, मैं कभी नहीं पहनता हूं, बस धन से बचत करने के लिए। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं प्रभु ऐसा मत कीजिए, मुझे मत दीजिए, क्यों मुझे ऐसा कर रहे, क्योंकि मेरी स्वभाव ऐसे ही है, उत्पत्त्या मैं इसी से ही उत्पन्न हुआ हूं, क्योंकि मेरी जन्म असुर कुल में हुआ है और असुर के स्वभाव कैसे है, भोग में रहता है। और ये भोग कैसे, सत्तम कामे सुते वरई काम, असुर लोगों का एक ध्यान है काम पर, जहां काम है सब कुछ निछावर कर सकते हैं। भगवान समुद्र मंथन के समय जब अमृत की घड़ा लेकर की प्रकट हुए एक स्त्री के रूप में छीन लिए वो अमृत की घड़ा को, तो सारे असुर ने अपने हथियार को डाल दिए, अरे ये अमृत के लिए हम झगड़ा कर रहे लड़ रहे हैं, असली अमृत तो यही है। और मोहिनी ने कह दी देखो तुम लोग झगड़ा मत लगो, जो है मैं समाधान कर लूंगी। तो असुर लोग ने देवताओं से अमृत की घड़ा छीन लिए थे और उन्होंने मोहिनी को देख कर कहा कि असली अमृत यही पाना है, ये नकली अमृत उसी को ही दे दो। ये घड़ा मोहिनी को दे दिए, कहा कि जो भी आप हिसाब कर लेना, जिसको जितना देना है ये आप पर निर्भर है, आप जैसे चाहे ऐसा ही करें। मोहिनी भगवान में कह रहे हैं देखो स्त्रियों को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, आप लोग कश्यप की पुत्र हो, वेद वेदांत जानते हो, पढ़े लिखे हो, इतनी जानकारी होने पर भी आप स्त्री पर विश्वास कर रहे हो, अरे उनकी मन तो कुत्ते भेड़ियों की तरह होता है, नया नया शिकार करते हैं। तो असुर लोग कह रहे हैं कि दूसरे स्त्री हो सकते हैं लेकिन आप जैसे स्त्री नहीं हो सकते हैं। तो भगवान कहे देखो फिर बाद में कंप्लेन नहीं करना कि हमको अमृत नहीं मिला, अभी सोच लो। कहते हाँ हाँ महारानी, आप जैसे ही करोगे ना ऐसे ही हम संतुष्ट हैं, क्योंकि आपके दर्शन से हम पूरी संतुष्ट हैं, पहले हमको तो पूरा अमृत मिल गया। और भगवान ने कहा कि ठीक है तुम असुर हो, इस लाइन में इस पंक्ति में बैठ जाओ और देवताओं को इस पंक्ति में बैठा। और असुर लोग यही कंडीशन किए थे कि जिस प्रकार व्यवहार करें कुछ भी नहीं बोलना है, चाहे पहले देवताओं को दे पहले असुर को दे, बा बीच में दे तो पहले शुरू से ही दे। सब चुपचाप बैठ गए। तो मोहिनी ने पूरा अमृत को देवताओं से पहले शुरू कर दिया और असुर लोक में नमुची आदि करे देखो अरे ये तो स्त्री हमारे साथ धोखा किया, हम इस पर विश्वास किए, ये देवताओं को सारे अमृत पिला रही हैं, ये गलत बात है। तो दूसरे करे अरे चुप रहो तुम पहले से बोले है ना कि कुछ नहीं बोलना है, अभी देखो सिर्फ। तो राहो चुपके से उठकर की देवताओं की पंक्ति में बैठ गए, देवता की बेस लेकर के, और कहां बैठ गया, और बीच में सूर्य और चंद्र जहां है उसी के बीच में बैठ गया। दुर्भाग्य वो भी समझ नहीं पाए, परंतु सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से उसका पोल खोल गया कि ये असुर है। तो भगवान उसके गले काट दिए। फिर जब सारे अमृत को देवताओं को बांट दिए तो फिर असुरों के बीच में हाफला होने लगा, आपस में लड़ने लगे। देखो भाई, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से अमृत चल गया। मोहिनी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं तुमको पहले से बताया था, तुम मुझ पर क्यों विश्वास कर रहे हो? त्रियों का स्वभाव ऐसे ही है, भेदभाव करने वाला है। तुम तो कह दिया, मैं क्या करूं? अभी कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि तुम पहले से कंडीशन किए हो। तो एक असुर कह रहे, अरे जाने दो, ये तो पानी जैसे अमृत था, वो तो चल गया, लेकिन असली अमृत यही है, मोहिनी हमको पति पत्नी रूप में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि असुर की स्वभाव है। प्रवृतिं च निवृतिं च जनानं विदुराः सुराः न शौचं नापि चाचारं न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं अप्रतिष्ठं ते जगत् आहु अनीश्वरं अपरस्पर संभूतं किमन्यात् काम हेतुकम्। उनके जीवन की लक्ष्य केवल काम हेतु है, काम उपभोग परमा एता बदति निश्चिता। उनके जीवन की टारगेट, उनकी गोल है काम उपभोग, काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। और ये काम को सैटिस्फाई करने के लिए वो इतना ही जानते हैं, इसके लिए धन ही साधन है, इसलिए बाह्य रूप कर क्रूप उन्होंने धन कमाने में लग जाते हैं। आशा पाशा सतेरे बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थान अन्नायेन अर्थ संचयान। अन्नायेन, असत उपाय से धन कमाते हैं, इहार्थ काम उपभोग, सिर्फ ये संसार के काम को उपभोग करने के लिए, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, साला साली के साथ रिश्ता ना टूटे, ये संबंध को बनाए रखने के लिए, इसलिए धन चाहिए। सवेरे नींद में सोते समय भी धन की चिंता, जगते ही धन की चिंता, काम करते हुए ही धन की चिंता। उनके दिन और रात में अंतर नहीं दिखता है, क्योंकि धन उनका आंख हमेशा ही खुला रखता है। तो प्रह्लाद जी कह रहे हैं, सक्त कामेशु ते बरी, हमारी उत्पत्ति उस काम से हुई है, एज फादर एज सन, जैसे पिता होता है ऐसे बेटा होता है। परंतु प्रह्लाद जी एक भिन्न ढंग की बेटा है, बाप तो असुर है, परंतु बेटा कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी इसमें ही बीतता है, हमारी स्वभाव इसमें है। और ते बरई, आपकी वर भी इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए है, ते बरई। परंतु प्रभु, मैं नारद जी के संग करने के कारण, भक्तों के संग में रहने के कारण मुझे डर लग रहा है। किसकी डर है? कहते तत्संग भी तो, इस असुरों के संग से मैं भयभीत हूं, क्योंकि असुरों की प्यार ज्यादा समय नहीं रहता है, असुरों के बीच में संबंध ज्यादा समय नहीं रहता है, आपस में लड़ झगड़ के मरते हैं। ये देखो मर रहे हैं अभी लोग, कभी भाई बन जाते हैं और कभी कसाई, एक दूसरे की गला काटते हैं। कहते इनकी संग, ये काम के संग से मैं बहुत भयभीत हूं। और हम सब क्या करते हैं, इस काम को ही संगी बनाना चाहते हैं। सीख लेना चाहिए महाजन से कि कितना खतरा होता है काम, जिसके आधार है धन, और वह लेता है अपने जीवन, एक काम ही नष्ट कर देता है, जला करके सबको राख बना देता है। यही क्रोध के रूप में प्रकट होता है, तब पूरा सारे संसार को राख कर देता है। बड़े शत्रु है, और ये कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है, इस काम को कितने खिलाओ इसकी भूख नहीं मिटता है। इसको भगवान गीता में कहते हैं, क्या है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवम महाअसन। महाअसन, आसन का मतलब भोजन करना। कहते भीम क्या भोजन करता है, भगवान क्या भोजन करते सारे ब्रह्मांड को, लेकिन काम है ये भी भगवान को निगलने वाला है। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति किए, लेकिन असुर और राक्षस उनको बाप को ही निकल लिए। राक्षस लोग कह रहे खा लो उनको रक्षा मत करो, ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा बाप को। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे महाअसन महत पाप। संसार में सारी जो पाप कार्य होता है इस काम के आधार पर, व्यक्ति इस काम को नियंत्रण करना नहीं चाहते, परंतु भक्ति करने पर धीरे धीरे इस काम भावना नष्ट होती है। न कामेरी अभिभूयते न तापेरी अभिभूयते भुंजिताम क्वथिताम हेतम। यदि किसी बीज को आप जला देंगे व पानी में इसको सड़ा देंगे तो फिर इसको जमीन पर डालने से उसका अंकुर नहीं होगा। तो भक्ति ऐसे हैं, जब ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होता है और प्रेम की बाण आ जाता है तो इसके बीज जो है, ये शरीर का बीज ही काम है, जिसको देख कर कि हमारे मन में सोया हुआ काम जागृत होता है। इसलिए ये सृष्टि के जो कुछ आप देख रहे हैं ये काम से ही बना हुआ है। प्रत्येक प्राणियों के अंदर इस काम उपभोग है। इसलिए भगवान मनुष्यों के लिए इस धर्म शास्त्र आदि दिए, वेद की मार्ग दिए, भक्ति की साधन दिए, जिससे कि ये हम बार बार ये जो जन्म मृत्यु की जो चक्र चल रहा है इससे हम छूट सके। और ये तभी संभव होगा जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करेंगे, अन्य देवताओं के शरण में नहीं। क्योंकि काम को बढ़ाने वाले ही देवता हैं। काम ज्ञान प्रपद्यन्ति अन्य देवता तं तं नियाम्य आस्ताय प्रकृति नियते स्वयं। क्योंकि हमारे अंदर जो डेमोनिक मेंटालिटी है वही सोचता है, अरे कुछ परवाह नहीं, क्या चैंटिंग करना है, मंगलारती क्यों उठना है, जप क्यों करना है। पहले तो है अपने पत्नी के साथ घूमो, अच्छे से गाड़ी में बैठा करके अच्छे होटल लेके जाओ, उनको अच्छे से भोजन खिलाओ, अच्छा वस्त्र दो। परंतु ये सब करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। इसलिए कुछ दान पुण्य कर लो। शिव बा दुर्गा जी के पास चल जाऊं, इसलिए तो पंजाब में लोग जागरण करते हैं, बहुत दिल्ली में भी जागरण करते हैं लोग, दुर्गा जी के जागरण। कृष्ण भक्त कम मिलेंगे लेकिन देवी देवताओं के भक्त बहुत हैं। और प्रभुपाद कहते हैं शिव और दुर्गा के भक्त संसार में भरे हुए हैं, क्योंकि सब लोग को काम चाहिए, पैसा चाहिए। परंतु ये लोग नहीं जानते हैं कि देवताओं की जो वरदान है ये एक समय खत्म होने वाला है। अंतबंतम ये सारी वर है ये अंत होने वाला है। फलम तेसम तद भवित अल्प मेधसा देवं देव जजो जानती मद भक्ता जानती मामपि। क्योंकि उनकी जो, क्योंकि देवता लोग तो परमानेंट नहीं है, स्वयं देवता भी नष्ट हो जाते हैं, फिर उनकी बार कैसे परमानेंट हो सकता है। इसलिए कामे स्थैस्थे हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो देवताओं की आराधना करता है, भगवान कहते क्या है, हृत ज्ञाना, उसकी ज्ञान नष्ट हो जाता है। ब्रुकासुर ने किया शिव जी की आराधना और देखो स्वयं शिव जी प्रकट हुए उनको देखकर कि वो बार कुछ नहीं मांगा, बार इतना मांगा कि उनकी पत्नी मुझे मिल जाए। और इसलिए उसका देखो कितने तेज बुद्धि से वो मांगा, कहा कि मुझे ऐसे वरदान दीजिए जिसके सार पर मैं हाथ रख दूं वो खत्म हो जाए। इसका मतलब है शिव जी को खत्म करके उनकी पत्नी से मुझे शादी करना। और ज्यों ये शिव जी ने कुछ सोचे नहीं, वो तो भोला बाबा है, भूल जाते हैं, कहे ठीक है तथास्तु। और देखिए वर प्राप्त करके शिव जी के सर पर हाथ रख दे और शिव जी भागने लगे। देखो पत्नी को वहीं छोड़ दिए। देखे नंदी बैल और कितना दूर तक दौड़ेगा, खुद बैल को छोड़कर ही भागने लगे। वही बैल में अपने पत्नी को बैठा करके लाए थे। फिर आखिर में कोई देवता उनको शरण नहीं दे पाए, आखिर भगवान के शरण में गए। इसलिए भगवान कहते हैं सारे संकटों से, सारे विपत्तियों से बचने के लिए माम एकम शरणं व्रज। इसलिए प्रह्लाद जी कह रहे हैं कि इस प्रकार काम से मुझे छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपके चरण की शरण ग्रहण किया हूं। त्वं उपाश्रिता, मैं तुम्हारी उपासना किया हूं। और देखिए भगवान विष्णु व श्री कृष्ण की आराधना और देवताओं की आराधना में क्या अंतर है। देवताओं की आराधना से काम और बढ़ता है, सैटिस्फाई नहीं होता है, परंतु भगवान की आराधना में तुरंत मन संतुष्ट हो जाता है। ऐसे ध्रुव महाराज 6 महीना में नारद जी के संग प्राप्त करके भगवान को जब दर्शन कर लिए, कहते प्रभु स्वामी कृतार्थम वरम न जाचे, मैं और कुछ वर की जाचना नहीं करता हूं आपसे, क्योंकि मैं जो चाह कर रहा था ना वो एक सीसा के टुकड़ा था, परंतु आपके दर्शन रूपी जो दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हो गया है, आई एम कंप्लीटली सैटिस्फाइड। जं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। केवल भौतिक भोग नहीं, और जितनी भी सारी संसार में है, बड़े पोस्ट पोजिशन, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, कुछ भी चाह नहीं होता है जिसको ये भक्ति प्राप्त हुआ है। ब्रुतासुर इंद्र के साथ लड़ाई कर रहा था और इंद्र ये भाव देखकर के हैरान हो गया, देखो ये असुर है कि सचमुच एक परमहंस भगवान की भक्त है। युद्ध मैदान में अर्जुन भी इसी प्रकार ध्यान नहीं कर पाया, जिसको भगवान सलाह दे रहे हैं कि तस्मा सर्वेशु कालेशु मंग अनुस्मर युद्ध च, परंतु ब्रुतासुर क्या कर रहे हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम मन स्मरेता सुपतिर गुणस्ते गृणीत कर्म करो तु काय। प्रभु मुझे नाक पृष्ठ स्वर्गलोक नहीं चाहिए, न पारमेष्ट्य ब्रह्मा जी के लोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम मुझे एक छत्र शासक बनने की इच्छा नहीं है, न रसाधिपत्यम, रसा मतलब इस मर्त्य लोक, इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर बनना है, परंतु इतना मैं चाहता हूं मन स्मरेता सुपति गुणस्ते गृणीत कर्म करो तु काय। मेरे मन में सिर्फ आपकी स्मरण बनी रहे और आपको स्मरण करते हुए मैं आपकी सेवा में लग जाऊं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्ति के ही निगूढ़ सिद्धांत समझाए को कुछ इच्छा नहीं करना चाहिए, निर्विन्नः कुछ इच्छा ना हो, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, जैसे कहते ना नाक पृष्ठम न धनम ना चाहना, उसी में ही हमारी असुरी प्रवृत्ति जो है ना अटेस्ट है, धन में, मान में, जन में। परंतु ये प्रह्लाद जी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि विविध प्रकार का ऐश्वर्य हमको प्रलोभन दे सकता है, परंतु हम वास्तव की इस प्रलोभन में यदि फंस जाए तो भक्ति रस को हम आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए प्रह्लाद जैसे स्मरण के आचार्य, उन्होंने सिखा था कि भगवान को कैसे स्मरण करना चाहिए। यदि मन में ये अभिलाषा व इच्छा ना हो तब फिर हम भगवान की सतत स्मरण कर सकते हैं। स्मरण आचार्य है प्रह्लाद। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि, प्रभुपाद कहते इससे छूटने के लिए क्या करना चाहिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। और शरण ग्रहण करने का यही मात्र एकमात्र की है। हमारी इच्छा सब लॉक है, बंद पड़ा है, लेकिन इसको खोलने के लिए ऐसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तभी फिर इस दरवाजा खोल जाता है। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? जैसे आपको कोई दवाई दिया गया और आपको परहेज बता गया, भाई आप इसको नहीं खाना चाहिए, खट्टी चीज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दवाई काम नहीं करेगा, तो उसी प्रकार अमृत ऐसे ही है। असली अमृत है भगवान की कथामृत, तब कथामृत। तो देवता लोग इसको पान नहीं करते क्योंकि भोग ऐश्वर्य में रहते हैं, अप्सराओं को भोग में लगे रहते हैं। यही अंतर है। छठा स्कंद में एक कथा आती है कि जब वृतासुर प्रकट हुआ तो सारे देवता भगवान के शरण में गए और भगवान को प्रार्थना की और इतने सुंदर सुंदर स्तुति बोले तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और देवताओं को कहे कि देवता लोग तुम लोग मांग लो कुछ, क्योंकि मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूं उसकी कोई भी चीज कमी नहीं रहता है। जैसे प्रह्लाद को कहे प्रीतोहं भग सुरश्रेष्ठं मत मत मदोपास्तान विद्यया आत्मश्चर्य स्मृति प्रंसा भक्ति सैव जयामयी किं दुरापमयी प्रीतं तथापि विद्वर्षभः मयि एकांतर मतिर नान्यत् मतो वांछति तत्त्वविद्। जो मेरे विषय में जानते हैं, तत्त्वविद हैं, कुछ वांछा इच्छा नहीं करते हैं, परंतु देवता लोग इतने बेकूफ थे, वो भगवान से मांग ली कि प्रभु देखो ये वृत्तासुर है ना, बहुत भयानक है, इनको जितना बहुत कठिन है, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र को निकाल लिया, कुछ तो उपाय बताइए, हम फिर वो स्वर्ग में जाकर के सुख भोग कर सके। भगवान कहे मूर्ख, न वेदं कृपणं श्रेयं आत्मानं गुण वस्तु त्रुक। जो जीवन के अर्थ को नहीं समझता है वो ब्राह्मण नहीं है, कृपण है। और तुम लोग क्या सत्वगुणी देवता हो, शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, इतना तुम्हारा अकल नहीं है, ये सारे चीज नाशवान है, चलो, परंतु आप मेरे आराधना किए हो ना, तुम्हारी बचने के उपाय में बताता हूं। परंतु असुर कुल में, मतलब असुर शरीर में रहते हुए भी वृत्तासुर को अमृत दिए भगवान। ये कौन से अमृत था? उनके स्मरण की अमृत। एक गोपी गीत में आता है ना, तब कथामृत भी है और एक स्मरण भी एक अमृत है, भगवत स्मरण। कौन सा श्लोक है शायद 13-14 नंबर श्लोक है। गोपियां ने स्मरण किया निरंतर। तो देवता लोग ऐश्वर्य में रहने के कारण असली इस अमृत का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, ये तथाकथित अमृत मिलता है। ऐसे चार प्रकार अमृत बड़े बड़े विद्वान शास्त्रकार कहते हैं। एक अमृत है कहते जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, एक अमृत है, स्त्रियों की होठ पर रहता है, उनकी मधुर भाषण है। तीसरा अमृत इसको कहते हैं जो धान है। परंतु सर्वश्रेष्ठ अमृत क्या है? भगवान की कथा, जो श्रवण करने पर प्रवेश करता है। ये सारे अमृत नाशवान है। देवता लोग अमृत पिए फिर मर जाते हैं। जो सच्चे अमृत है वो है परीक्षित महाराज को जलाए। भगवान के दर्शन अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, भगवान की स्मरण अमृत है। तो जो बुद्धिमान है असली अमृत को रखता है, और सब घड़ा फूटने पर सब बाहर निकल जाएंगे। संसार में जो थोड़ा से मीठी बात बोलता है ना, सब फंस जाते हैं। आह बहुत कितना अच्छा बोला। ऐसे लोगों को अच्छा कथा कह करके हंसाने वाला भी व्यक्ति स्वयं क्या करता है? फांसी लगा देता है। आप लोग सुने हैं ना, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में सबसे बड़ा जो हास्यकार है, चाकू से अपने गले को काटा, जब तो काटा नहीं तो फिर अपने बेल्ट खोल करके उनको अपने स्वयं को हैंग कर दिया। देखिए, लोगों को हंसाने वाला, मधुर भाषण बनने वाला, आनंद देने वाला स्वयं इतने फ्रस्ट्रेट। तो संसार में सब कुछ मरा हुआ है, क्योंकि शरीर मरने वाला है। अमृत तो एकमात्र है भगवान, और भगवान के साथ जो कुछ जोड़ा है, अर्थात भगवान के साथ क्या जोड़ा है? भक्ति। ये यहलोक और परलोक में सुख देने वाला है, ये मरेगा नहीं, और यही अमर करता है। देखिए, ये सब कथाएं जो है ये अमर कथा है, कई जुग जुग से रहा, इसको रख लेना चाहिए। परंतु उसमें रुचि है नहीं, क्या करें। गोले केरा प्रेम धना, हाँ, हरिनाम संकीर्तन, रति ना होइला केनता, विफल जन्म को है। अन्य सारी कार्य में हमारा पूरा एक्सपर्ट, हाँ, तुरंत ड्यूटी पे पहुंचना है इस टाइम, पर कथा में फिर। और कलि युग ऐसा ही है, जैसे सत्य युग में लोग और कुछ कार्य नहीं था, ध्यान करते थे, भगवान की कथा श्रवण और स्मरण। त्रेता युग में लोग, अधिकांश लोग यज्ञ में बैठते थे, भगवान की मंत्र उच्चारण करते थे। और द्वापर थोड़ा डिग्रेडेड हो गया, लोग मूर्ति, श्रीमूर्ति आराधना व श्री विग्रह की आराधना किए। तो अधे 50% लोग काम धंधा में लग गए। परंतु कलयुग ऐसा है 100-100% क्या है, सब नास्तिक। कलयुग के लक्षण पढ़ लेना कि क्या। कलयुग जब आने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज क्या देख रहे हैं, ये पहला स्कंद की 14वां था। किसी का किसी के साथ प्रीति नहीं है, छोटे छोटे बातें पर झगड़ा शुरू होता है, परिवार के लोगों के बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है, तुरंत डाइवोर्स। ये पहले युधिष्ठिर महाराज देखे स्थिति, और भीमसेन से पूछ रहे, ये क्यों, क्या हो रहा है, गाय दूध नहीं दे रही है, खून उगल रहे थन से, गांव की जो देवी देवताओं की मूर्तियों से क्या है, आंसू निकल रहा है, कुत्ते सियार उल्लू जैसे प्राणियों ने बहुत हल्ला मचा रहे। और आज भी इसे देखो कि गाय का दूध कहां मिलता है, इंजेक्शन देकर खून ही निकाल रहे हैं, उसको पी रहे हैं लोग, तो ही बढ़ेगा। नदियों की, सरोवर के जल दूषित हो गया, आज देखो जमुना नदी पूरा ड्रेन। ये 5000 साल पहले ये सब सूचना मिली थी, और आज वो देख रहा है। इसलिए बहुत भयानक स्थिति है। इसलिए जो बुद्धिमान है इसी जन्म में अपने मन को दृढ़ करके इस भगवत भक्ति में लग जाता है, और कुछ भी वासना नहीं रखना चाहिए। यदि वासना है, हम समर्थ नहीं होते हैं अपने वासना को दूर करने के लिए, और संभव भी नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन रोज आकर के श्री विग्रह के सामने प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की कृपा में बहुत शक्ति है, परंतु प्रार्थना करने पर हमको प्राप्त होती है। तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। केवल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, सीधा लेट नहीं जाना चाहिए। हाँ, प्रणाम करते समय प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अष्टांग प्रणाम का मतलब यही। तब फिर हम बच सकते हैं कलयुग की चुनौतियों से। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, लक्ष्मी जी इसलिए रहती है ना नारायण के पास सेवा के लिए। लेकिन जो चंचला है लक्ष्मी के दूसरे स्वरूप, वो नारायण के पास नहीं रहती है, वो तो घर घर भटकती है। यदि धन आप कमाए तो सेवा के लिए तो ठीक है, वो तो लक्ष्मी है। लेकिन गृह लक्ष्मी को बनाए रखने के लिए, उनके मन को बनाए रखने के लिए, धन कमाना काम को पोषण करने के लिए, तो ये धन नहीं है, वो चंचला। इसलिए धन आता है फिर चल जाता है। परंतु लक्ष्मी का भी जो धन लक्ष्मी है, वो नारायण के चरण नहीं छोड़ती है। तो हम ऐसे धन को लगा के रखे भगवान की सेवा में, तो फिर ठीक है। इसलिए हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं ना लक्ष्मी पॉइंट, हम नहीं करते इतना अमाउंट, इतने थाउजेंड्स रुपीस, लाख। लोग तो यही कहते हैं लाख रुपया कमा लिए। लक्ष्य तो इसमें है लाख कमाने का, उनका लक्ष्य कहाँ है कि भगवान की सेवा करने के लिए। धन को जीवन मत बनाइए, उद्देश्य रखे सेवा को। धन को लक्ष्य मत बनाइए, नारायण के सेवा के यदि लक्ष्य रखेंगे ना, अपने आप लक्ष्मी आ जाएंगे, समझे? तो सेवा को लक्ष्य बनाइए। भक्तों के जीवन में कभी धन कमाने का इच्छा नहीं रहता, इच्छा रहता है प्रभु की सेवा। प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी हमारे जीवन के लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए, उसको निरूपण करना चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। गौनिताय की जय। श्री श्री राधा राधिका रमण जी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।